नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश।
और मैं हूं आकाश। हम दोनों एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम करियर अड्डा में।
अखंड भारत की कहानियों का सिलसिला जारी है और आज इतिहास की बातों में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम आ पहुँचे हैं 1919 में।
दोस्तों, आप 1919 के बारे में क्या जानते हैं? मेरा मतलब है कि 1919 में ऐसा क्या हुआ था जो ये साल यादगार हो गया?
आकाश, इस साल को तो कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है, क्योंकि इस साल देश में एक भीषण नरसंहार हुआ था जिसे लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं।
बिल्कुल दिनेश। दोस्तों, आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ही बात करने जा रहे हैं।
दोस्तों, हमने आपको भारत की स्वतंत्रता की जो अब तक की कहानियाँ सुनाई है, उससे इतना अंदाजा तो लग ही गया होगा कि भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन अब तक ये गुस्सा केवल शांति और अहिंसात्मक तरीके से सामने आ रहा था।
महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद 1919 मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे, जिसका असर पंजाब पर भी था। वैसे दोस्तों, पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ माना जाता था, जो इस बात पर गर्व करता था कि उसने राज्य में कॉलोनियों और रेलवे का विकास कर वहाँ समृद्धि लाई।
खैर, सच इससे बिल्कुल अलग है। हालांकि इस विकास के लिबास की आड़ में अंग्रेजी हुकूमत उन सभी उठने वाली आवाजों को क्रूरता से कुचलना चाहती थी, और ये 1857 के विद्रोह, 1870 के दशक के कूका आंदोलन और साथ ही 1914 से 1915 के गदर आंदोलन के दौरान देखने को मिला।
जलियांवाला बाग कांड से पहले से ही पंजाब में विद्रोह की आग लगी हुई थी। 1915 के गदर विद्रोह के बाद गंभीर दमनकारी नीतियां देखने को मिली। शिक्षित समूहों की आवाज दबाई जाने लगी। आयरलैंड के जमींदार पृष्ठभूमि से आने वाले ओ डायर ब्रितानी उपनिवेश के अधिकारी वर्ग से जुड़े शिक्षित लोगों, व्यापारियों और साहूकारों के खिलाफ सोच रखते थे। जनरल ओ डायर को साल 1913 में पंजाब के लाला हरकिशन लाल के पीपुल्स बैंक की बर्बादी के लिए भी दोषी माना गया। इसके चलते लाहौर के व्यापारियों और खास तौर पर शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का सब कुछ लूट गया।
साल 1917 से 1919 के दरमियान कीमतों में भारी उछाल आया। मजदूरी के मानकों में गिरावट आ गई। निचले पायदान पर खड़े मजदूर और पीछे धकेल दिए गए, और इसका नतीजा ये हुआ कि कामगार और कारीगर घोर तंगी में घिर गए। साल 1918 में वो समय भी आया जब इन्फ्लुएंजा और मलेरिया जैसी महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली। इन सालों में ये जो कुछ भी हुआ, उसने सूत्रधार की भूमिका अदा की।
फरवरी साल 1919 के अंत में जब रॉलेट बिल आया तो उसका व्यापक विरोध हुआ, और इन सभी घटनाक्रमों की वजह से पंजाब इस विरोध में सबसे आगे था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ आंदोलन भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया और खुद पूरे देश के दौरे पर निकल गए ताकि लोगों को एकजुट कर सकें। इस दौरान वो पंजाब प्रांत में प्रवेश करने ही जा रहे थे, लेकिन इसके ठीक पहले 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस भेज दिया गया।
देश के अधिकांश शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के ही अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और जालंधर शहर में देखने को मिला। लाहौर और अमृतसर में हुई जनसभाओं में तो 25 से 30 हजार लोग शामिल हुए। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन लोगों ने एक मार्च निकाला। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही, साथ ही मुस्लिम भी शामिल हुए। मुस्लिमों ने तुर्की सैनिकों जैसे लिबास पहन रखे थे। बड़ी संख्या में लोग तो जमा हुए ही थे, लेकिन जनरल डायर और उनके प्रशासन को सबसे अधिक चिंता हिंदू मुस्लिम एकता देखकर हुई।
वहीं दूसरी ओर अपने नेताओं के निर्वासन की खबर ने अमृतसर के लोगों को गुस्से से भर दिया। करीब 50,000 की संख्या में लोग जुटे और 10 अप्रैल को अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने सिविल लाइन्स तक मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान सैनिकों से उनकी मुठभेड़ भी हुई, पथराव और गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। गुस्साई भीड़ शहर वापस तो आ गई, लेकिन उनके अंदर हलचल मची हुई थी।
हालात खराब हो रहे थे। जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को आदेश दिया गया कि वो इन हिंसक घटनाओं को संभालने के लिए फौरन अमृतसर पहुंचे। 13 अप्रैल को लगभग शाम के 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25,000 से 30,000 लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये गोलीबारी करीब 10 मिनट तक बिना सेकंड रुके होती रही। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई। गोलियां चलाते चलाते चलाने वाले थक चुके थे और 389 जिंदा लोग लाश बन चुके थे।
लेकिन दोस्तों, ये तो सरकारी बातें हैं, जबकि अनाधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। इतिहास में डायर का नाम अमृतसर के कसाई के तौर पर है, और ऐसा न केवल राष्ट्रवादी बल्कि इंपीरियलिस्ट भी मानते हैं। उनके निर्मम कृत को भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी के अपवाद के तौर पर देखा जाता है।
बाद में आधिकारिक हंटर कमीशन की जांच और अनाधिकारिक तौर पर हुई कांग्रेस की जांच में पाया गया कि जनरल डायर इस तरह की सोच रखने और सोच को अंजाम देने वाला अपने ही तरह का एक अकेला शख्स था। हंटर कमीशन के सामने डायर ने माना था कि उन्होंने लोगों पर मशीन गन का इस्तेमाल किया और बाघ के लिए एक संकरा सा रास्ता था, और सैनिकों को आदेश दिया गया कि वो जिस ओर ज्यादा संख्या में लोगों को देखे उधर फायर करें। जब फायरिंग बंद हो गई, तो वहाँ ना तो घायलों के लिए मेडिकल की व्यवस्था थी और ना लाशों के अंतिम कर्म की। उन्हें व्यापक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के उद्धारकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके जख्म आज भी हरे हैं। खैर, यह हमारे इतिहास का सबसे स्याह पन्ना है। इतिहास के बाकी पन्ने पलटने के लिए हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और हाँ, कार्यक्रम खत्म होने के बाद नंबर 3 दबाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रिकॉर्ड करें।
धन्यवाद।